उमज्ञान्तिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदायं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि अष्टातति शतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम राम हरे 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 कृष्णा टेक्स्ट 21 सर्वे वयं तावत् इहास्महे अत कलेवरं यावत् असो विहाय लोकं परं विरजक्षं विशोकम् यस्याति अयं भागवत प्रदान ट्रांसलेशन वी शैल ऑल वेट हियर अंटिल द फॉरमोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड महाराज परीक्षित रिटर्न्स टू द सुप्रीम प्लैनेट विच इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मंडेन कंटामिनेशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ लेमेंटेशन तो यहाँ पे जो साधु संत उपस्थित हुए हैं वो सब बता रहे हैं कि हम इधर ही रुकेंगे जब तक परीक्षित उनका देह त्यागते नहीं है और जब तक परीक्षित उनके शरीर छोड़ने के बाद जब तक उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती जो धाम में विशोकम जहाँ पे शोक नहीं है तो ये भौतिक दुनिया में हर एक जगह पे ये भौतिक दुनिया का लक्षण है शोक शोक से भरा है पर भगवत धाम कैसा है विशोकम बिना शोक का और विरजक्षम उसका मतलब है कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मंडेन कंटामिनेशन तो भौतिक कलमश बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे साधु संत बता रहे हैं कि जैसे परीक्षित ने व्रत लिया है कि वो उपवास करेंगे और भगवान का याद करते हुए उनका जो शरीर है उसको त्याग करेंगे तो वैसे ही साधु संत बोल रहे हैं यहाँ पे हम भी इधर ही रुकेंगे जब तक परीक्षित को ये जो सबसे महान गति है परम धाम है उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक हम यहीं पे रुकेंगे परपोर्ट बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ द मटीरियल क्रिएशन विच इज कंपेयर्ड टू द क्लाउड इन द स्काई देर इज द परव्योम और द स्पिरिचुअल स्काई फुल ऑफ प्लैनेट्स कॉल्ड वैकुंठस तो ये भौतिक दुनिया से परे क्या है परव्योम परव्योम का मतलब है स्पिरिचुअल स्काई जैसे हम आसमान में देखते हैं बादल दिखता है बादल बहुत छोटा है पर आसमान बहुत बड़ा है तो ये भौतिक दुनिया एक काले बादल की तरह है कितना छोटा है आसमान में बादल बहुत छोटा है तो उतना ही छोटा ये भौतिक दुनिया है बाकी आकाश क्या है खुला आकाश स्पिरिचुअल वर्ल्ड है आध्यात्मिक जगत है सच वैकुंठ प्लैनेट्स आर ऑल्सो डिफरेंटली नोन एज द पुरुषोत्तम लोक अच्युत लोक त्रिविक्रम लोक ऋषिकेश लोक केशव लोक अनिरुद्ध लोक माधव लोक प्रद्युम्न लोक சங்கர்ஷன் லோக, ஸ்ரீதர லோக, வாசுதேவ லோக, அயோத்யா லோக, துவாரகா லோக, and many other millions of spiritual lokas wherein the personality of Godhead predominates. तो ऐसे बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं. कितने लोक हैं? जितने भी भगवान के नाम हैं वो नाम का एक लोक है. पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक, ऐसा अनेक सारे लोक हैं. गिनती नहीं कर सकते उतने. मेनी अदर मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल लोकस. कितने हैं? करोड़ों, अरबों, गिनती नहीं हो सकता उतने आध्यात्मिक जगत है. और ये सब जगत में है भगवान विराजमान है मुख्यतः. All the living entities there are liberated souls with spiritual bodies as good as that of the Lord. तो भगवान वहाँ पे रहते हैं ये सब लोक में अपने अलग अलग रूप के साथ. कहीं पे पुरुषोत्तम के रूप में, अच्युत के रूप में, केशव के रूप में, अनिरुद्ध के रूप में. और यहाँ पे हर एक लोक में बहुत सारे जीव हैं, पर ये सब जीव मुक्त आत्मा है. उनका आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं. और बहुत बार ये सब जीवों को जो भगवत धाम में रहते हैं भगवान जैसा स्वरूप है उनका, चतुर्भुज रूप रहता है. देर इज नो मटीरियल कंटेमिनेशन. एवरीथिंग देयर इज स्पिरिचुअल एंड देयर फोर देर इज नथिंग ऑब्जेक्टिवली लेमेंटेबल. तो वहाँ पे ये वैकुंठ लोक में कुछ भी कलमश नहीं है ये भौतिक दुनिया का, और सब कुछ आध्यात्मिक है. इसलिए वहाँ पे कुछ शोक नहीं होता, वहाँ पे कुछ दुख होता ही नहीं है. इसलिए इन जगहों को वैकुंठ बोलते हैं. कुंठ का मतलब है जहाँ पे दुख है, कष्ट है, और वैकुंठ का मतलब है जहाँ पे बिल्कुल दुख नहीं है. दे आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एंड आर विदाउट बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. तो वहाँ पे सत्यानंद चिदात्मनी अनंत रूप से आनंद में रहते हैं, आध्यात्मिक आनंद. और वहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि होता नहीं है. एक बार श्रीला प्रभुपाद की कहानी बताते हैं. एक क्रिश्चियन मिशनरी था, क्रिश्चियन प्रीस्ट, जहाँ पे कोल माइन है ना, जहाँ पे कोयला लोग निकालते हैं, तो वहाँ पे जाके ये प्रचार कर रहा था उन लोगों को कि आप लोग जीसस को वर्शिप करो, क्रिश्चियन बन जाओ, आप लोगों को स्वर्ग मिलेगा, किंगडम ऑफ गॉड. तो ये लोग पूछने लगे, अनपढ़ लोग थे, तो ये लोग पूछने लगे स्वर्ग में क्या रहेगा. वो बोले ठीक है, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो हमारा क्या होगा. वो बोला आप स्वर्ग नहीं जाएंगे तो नरक जाएंगे. नरक में कैसा रहता है? नरक अंधेरा जगह रहता है, नरक कुछ रोशनी नहीं आता, सब काला काला दिखता है. तो लोग बोलते हैं वो हम इधर भी महसूस कर रहे हैं, कोयले के माइन में क्या रहता है, सब काला काला ही दिखता है. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम नरक जाएंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यही सेम एनवायरनमेंट उधर भी है, रेप्लिकेट हुआ है. तो ये सोच रहा है इन लोगों को कन्विंस कैसे करूं स्वर्ग जाने के लिए, जीसस का भक्ति करने के लिए. तो देखता है ये क्रिश्चियन प्रीस्ट कि ये सब लोग ना जो कोयले के माइंस में रहता है, उस समय टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो उनका एक ही मनोरंजन था. पूरा काला जगह पर रहते थे, अंधकार के जगह पर, एक ही मनोरंजन था. वो क्या था? न्यूज़पेपर आता था दिन में एक बार. तो जब न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर का एक एक पन्ना, एक एक शब्द, पिक्चर देखते थे, उसमें उनको बहुत आनंद आता था. तो पूरे दुख में वो एक आनंद था. तो इसने बोला आप लोग नरक जाओगे तो वहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं रहेगा, वैकुंठ में या जो भी किंगडम ऑफ गॉड हेवन में वहाँ पे न्यूज़पेपर मिलेगा. तो ये लोग बोले हाँ ठीक है, हम किंगडम ऑफ गॉड ही जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे. तो इनको बोला कि यहाँ पे नरक में न्यूज़पेपर नहीं है तो वहाँ जाना नहीं चाहते. तो वैसे ही भगवत धाम क्या है? जहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि नहीं है. क्योंकि ये दुनिया में इतना ये सब चीज़ कष्ट झेलने को मिलता है, तो हमको भगवत धाम जाने के लिए प्रेरणा देने के लिए शास्त्र में यह वर्णन आता है, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बिल्कुल कष्ट नहीं है. एंड अमंगस्ट ऑल द अबव मेंशन्ड वैकुंठ लोकस देर इज वन सुप्रीम लोक कॉल्ड गोलोक वृंदावन विच इज द अबोड ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड हिज स्पेसिफिक एसोसिएट्स. तो ये सब वैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ गोलोक वृंदावन है, जहाँ पे कृष्ण स्वयं निवास करते हैं अपने पार्षदों के साथ। महाराज परीक्षित वॉज डेस्टिन टू अचीव दिस पर्टिकुलर लोक एंड द ग्रेट ऋषिज असेंबल देयर कुड फोर सी दिस। तो महाराज परीक्षित कौन सा लोक प्राप्त करने वाले थे? गोलोक वृंदावन, क्योंकि कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के रूप के प्रति उनका आकर्षण था। और यहाँ पे जो साधु संत इकट्ठा हुए हैं उनको ऑलरेडी दिख रहा था परीक्षित का गति क्या होने वाला है। ऑल ऑफ देम कंसल्टेड अमंग देमसेल्व्स अबाउट द ग्रेट डिपार्चर ऑफ द ग्रेट किंग एंड दे वॉन्टेड टू सी हिम अप टू द लास्ट मोमेंट बिकॉज दे वुड नो मोर बी एबल टू सी सच अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो उन्होंने एक दूसरे से डिस्कशन किया, संवाद किया और उन्होंने कंक्लूड किया हम अंत समय तक रुकेंगे परीक्षित के, क्योंकि परीक्षित इतने महान राजा हैं, इतने महान भक्त हैं, तो इनका संग हमको बहुत देर तक नहीं मिलने वाला है, थोड़े दिनों में ये भगवत धाम जाने वाले हैं, इसलिए ये जो अवसर है हम खोना नहीं चाहते। जब तक परीक्षित यहाँ पर रहेंगे हम भी परीक्षित के साथ रुकेंगे। When a great devotee of the Lord passes away, there is nothing to be lamented because the devotee is destined to enter into the kingdom of God. तो जब भी भगवान के महान भक्त उनका तेरहवां होता है, वो शरीर छोड़ते हैं, तो रोने के लिए ज़रूरत नहीं है। हालांकि दर्द तो होता है क्योंकि उनका संग नहीं मिलने वाला है, पर भौतिक रूप से शोक नहीं होता, क्योंकि हमको पता है निश्चित रूप से ऐसे भक्त को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, ऐसा मनुष्य का जिंदगी अभी सफल हुआ है, तो इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, शोक करने की जरूरत नहीं है। बट द सॉरी प्लाइट इज दैट सच ग्रेट डिवोटीज लीव आवर साइट एंड देयरफॉर देयर इज एवरी रीजन टू बी सॉरी। तो हालांकि जब महान भक्त जाते हैं रोने के लिए जरूरत नहीं है, बुरा लगने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवत धाम गए हैं, फिर भी बुरा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों का अभी हमको संग नहीं मिलेगा, हम वो संग से वर्जित हो जाएंगे। एज द लॉर्ड इज रेयरली टू बी सीन बाय अ प्रेजेंट आईज सो ऑल्सो आर द ग्रेट डिवोटीज। तो जैसे भगवान का दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से भगवान का दर्शन मिलता है, वैसे ही भक्तों का दर्शन मिलना भी बहुत दुर्लभ है। वो जो श्लोक आता है वट इज दैट श्लोक जहाँ पे बताया गया है कि ये जो मनुष्य शरीर है दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ क्या है, ये मनुष्य शरीर में भगवान के भक्तों का दर्शन प्राप्त होना, वो सबसे बड़ा दुर्लभ चीज़ है। एज द लॉर्ड इज रेयरली सीन बाई आर प्रेजेंट आई सो ऑल्सो आर द ग्रेट डिवोटीज द ग्रेट ऋषिज देयरफॉर करेक्टली डिसाइडेड टू रिमेन ऑन द स्पॉट टिल द लास्ट मोमेंट। तो इसलिए ये जो महान संत है निश्चय करते हैं अंत समय तक परीक्षित के हम यही रुकेंगे, क्योंकि अभी परीक्षित का संग हमको ज्यादा देर तक नहीं मिलने वाला है। टेक्स्ट 22। आश्रित्य तत् ऋषिगण वच परीक्षित समम मधुचूद गुरु चाविल चावलीकम। अबासतीनम अभयच्छंद युक्तान श्रुश्रुमनाश्चरितानि विष्णु। ऑल दैट वॉज स्पोकन बाय द ग्रेट सेजेस वॉज वेरी स्वीट टू हियर, फुल ऑफ मीनिंग एंड अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एज परफेक्टली ट्रू। सो आफ्टर हियरिंग देम महाराज परीक्षित डिजायरिंग टू हियर of the activities of Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, congratulated the great sages. तो ये जो ऋषि गण यहाँ पे जो साधु संत इकट्ठा हुए हैं उनका जो शब्द है, उन्होंने जो बोला है वो सुनने के लिए भी मधुर था और पूरे अर्थ से भरा था। तो वो परीक्षित का गुणगान ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, वो परीक्षित का गुणगान दिल से कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब सुन के परीक्षित महाराज वापस ये साधु संत को संबोधित करते हैं। टेक्स्ट 23। समागता सर्वत्र एव सर्वे वेदायता मूर्ति दरास्त पृष्ठे नेहात नामूत्र च काश्चनार्थ कृते परानुग्रहम आत्मशीलम। The king said, O great sages, you have all very kindly assembled here, having come from all parts of the universe. You are all as good as the supreme knowledge personified, who resides in the planet above the three worlds, Satyaloka. Consequently, you are naturally inclined to do good to others, but for this you have no other interest either in this life or in the next. तो परीक्षित, ये साधु संत जो है, ऋषि है, उनको संबोधित करके बोलते हैं कि आप सब लोग बहुत कृपा करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड से अलग अलग लोकों से आप यहाँ पे आए हैं, और आप सब लोग जो ज्ञान है उसके मूर्तिमान स्वरूप है। वेदा यथा मूर्ति दरास्त्र पृष्ठे, तो ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप आप सब लोग हैं। तो इसलिए है क्योंकि आप सब लोग नेचुरली स्वाभाविक रूप से लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, और आपका एक ही इच्छा है, एक ही आशा है, वो क्या है, ये जीवन में या अगला जीवन में लोगों का हित होना चाहिए। परपोट, द सिक्स काइंड्स ऑफ ऑपुलेंसेस, नेमली वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड रेनाउंसिएशन, आर ऑल ओरिजिनली द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पर्टेनिंग टू द एब्सोल्यूट पर्सनलिटी ऑफ गॉड। तो ये जो छह ऐश्वर्य है, धन, शक्ति, जो यश है, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य, ये सब ओरिजिनली ये ऐश्वर्य भगवान के पास रहता है, इसलिए भगवान को भगवान बोलते हैं। भगवान का मतलब क्या है, जिनके पास ये छह ऐश्वर्य है पूरे मात्रा में। द लिविंग बींग्स हु आर पार्ट एंड पार्सल एंटिटीज ऑफ द सुप्रीम बींग हैव ऑल दीज एट्रीब्यूट्स पार्शली अप टू द फुल स्ट्रेंथ ऑफ 78%। तो ये हमने देखा है पिछले अध्यायों में, जो जीव है, जीवों के पास भी ये सब ऐश्वर्य है, पर परसेंटेज बहुत कम है। भगवान के पास 100% है इस छह ऐश्वर्य, जीवों के पास मैक्सिमम 78% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इन द मटीरियल वर्ल्ड दीज एट्रीब्यूट्स अप टू 78% ऑफ द लॉर्ड्स एट्रीब्यूट्स आर कवर्ड बाई द मटीरियल एनर्जी एज अ सन इज कवर्ड बाई अ क्लाउड। तो जैसे सूर्य को एक बादल ढकता है, तो वैसे ही भगवान जो सूर्य की तरह है, ये जो भौतिक गुण है भगवान को कभी कभी ढकते हैं, ये जो भौतिक दुनिया के गुण है। द कवर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सन इज वेरी डिम कंपेयर टू द ओरिजिनल ग्लेयर, एंड सिमिलरली द ओरिजिनल कलर ऑफ द लिविंग बींग्स विद सच एट्रीब्यूट्स बिकम्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। तो सूरज, हम बिना बादल के सूरज देखेंगे तो बहुत शक्तिशाली है, पर जब बादल आ जाता है सामने, बादल से भी सूरज की किरण दिखते हैं, पर सूरज का शक्ति कवर होके आता है, बहुत धीमी गति से आता है। तो वैसे ही जीवों से भी कभी कभी भगवान का ये ऐश्वर्य दिखता है, पर वो पूरे मात्रा में नहीं होता। भगवान सूर्य के पास, सीधा सूर्य को देखेंगे जितना प्रकाश आता है, बादल से उतना प्रकाश नहीं आता। तो ये फर्क है, भगवान में पूरे ऐश्वर्य हैं और जीव में, जीवों से भी थोड़ा बहुत ऐश्वर्य दिखता है, पर परसेंटेज बहुत कम है। दीज देर आर थ्री प्लैनेटरी सिस्टम्स, नेमली द लोअर वर्ल्ड्स, द इंटरमीडिएट वर्ल्ड्स एंड द अपर वर्ल्ड्स। तो हम जाते हैं कि तीन अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, जो पाताल लोक हैं, नीचे के लोक हैं, मध्यम लोक, भूलोक, और स्वर्ग लोक, ऊंचे के लोक। द ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ आर सिचुएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरमीडिएट वर्ल्ड्स, बट द लिविंग बींग्स लाइक ब्रह्मा एंड हिज कंटेम्पररीज लिव इन द अपर वर्ल्ड्स, ऑफ विच द टॉप मोस्ट द सत्यलोक। जो मनुष्य हैं धरती में, मध्य लोक में रहते हैं, और ब्रह्मा जी हैं वो सत्यलोक में रहते हैं, सबसे ऊंचे लोक में। इन सत्यलोक द इनहैबिटेंट्स आर फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ वैदिक विजडम एंड थस द मिस्टिक क्लाउड ऑफ मटीरियल एनर्जी इज क्लियर्ड। तो यहाँ पे परीक्षित बता रहे हैं, ये जो साधु संत यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनको संबोधित करके परीक्षित बता रहे हैं कि आप सब लोग सत्यलोक के, जितने सत्यलोकों के पास ज्ञान रहता है, सत्यलोक में खासियत है, जो भी व्यक्ति रहते हैं उधर पूरे इंटेलिजेंस, बुद्धि से भरे हैं, पूरा वेद का सार आता है, तो परीक्षित इनका गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप सब लोग भी सत्य लोक के निवासी के जैसे हैं, वेदों का पूरा सार आप सबको पता है। सच पर्सन्स देयरफॉर दे आर नोन एज वेदांस पर्सोनिफाइड। तो इसलिए जो सत्य लोक के लोग हैं उनका वर्णन आता है, वो जो वेद हैं वेद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वेदा यथा मूर्ति दरास्त पृष्ठे, मूर्तिमान स्वरूप हैं वेद के। सच पर्सन्स बीइंग फुल्ली अवेयर ऑफ नॉलेज बोथ मंडेन एंड ट्रांसडेंटल हैव नो इंटरेस्ट इन ईदर द मंडेन और द ट्रांसडेंटल वर्ड्स। तो क्योंकि इन सब लोगों को इतना ज्ञान है, उनको बिल्कुल आशा नहीं है, भौतिक दुनिया में भी आशा नहीं है और आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने का भी आशा नहीं है। तो इनका आशा क्या है? दे आर प्रैक्टिकली डिजायरलेस डिवोटीज। तो ये जो लोग हैं उनके पास बिल्कुल इच्छा नहीं है। इन द मंडेन वर्ल्ड दे हैव नथिंग टू अचीव एंड इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड दे आर फुल इन देमसेल्व्स। तो ये भौतिक दुनिया में उनको प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं और आध्यात्मिक रूप से पूरे तरह से संतुष्ट है। देन वाई डू दे कम टू द मटीरियल टू द मंडेन वर्ल्ड? तो प्रश्न उठेगा, ये भौतिक दुनिया में उनको कुछ लेना देना नहीं है तो भौतिक दुनिया में आते क्यों हैं ये सब भक्त? दे डिसेंड ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स एज मसायास बाय द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड टू डिलीवर द फॉलन सोल्स। तो ये सब जो साधु संत आते हैं ये दुनिया में अवतार लेते हैं या जन्म लेते हैं एक ही कारण की वजह से, भगवान का उपदेश का पालन करते हुए जो जीव है बद्ध जीव है उनका उद्धार करना। ऑन द अर्थ दे कम डाउन एंड डू गुड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस। तो ये सब लोग ये दुनिया में आते हैं किसके लिए? लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का हित करने के लिए। अलग अलग वातावरण में अलग अलग जगह पे इनका जन्म होते रहता है। दे हैव नथिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड सेव एंड एक्सेप्ट रिक्लेम द फॉलन सोल्स रॉटिंग इन द मटीरियल एग्जिस्टेंस डिल्यूटेड बाय मटीरियल एनर्जी। तो उनका एक ही लक्ष्य है, ये दुनिया में आते हैं एक ही कारण के लिए। किसके लिए? ये भौतिक दुनिया के जो लोग हैं जो यहाँ पे कष्ट भुगत रहे हैं ये भौतिक दुनिया में, उनका उद्धार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद उनका जिंदगी का कहानी बताते हुए अपने भक्तों के एक बार बोल रहे थे प्राइवेट सेशन में। तो प्रभुपाद बोल रहे थे, मुझे एक्चुअली ये दुनिया में आने का बिल्कुल इच्छा नहीं था। प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत का बात बोल रहे हैं। मैं कृष्ण को बोल रहा था मुझे बिल्कुल नहीं जाना ये भौतिक दुनिया में, माया के नगरी में। तो कृष्ण बोलते हैं प्रभुपाद को, नहीं आप जाओ, आप थोड़ा पुस्तक लिख के आ जाओ, बस उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो फाइनली प्रभुपाद मान लेते हैं। तो ये सब जो महान भक्त हैं ये दुनिया में आते हैं किसके लिए? लोगों का उद्धार करने के लिए, वो एक ही लक्ष्य है। तो इस तरह से परीक्षित इनका गुणगान करते हुए बोलते हैं, आप सब लोग आए यहाँ पे मेरा हित करने के लिए। टेक्स्ट 24, ततश्च पृच्छम इमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यायाम सर्वात्मना म्रियमानश्च कृत्यम शुद्धं च तत्रा मृषताभियुक्ता। ट्रांसलेशन। ओ ट्रस्टवर्थी ब्राह्मणस, I now ask you about my immediate duty. Please, after proper deliberation, tell me of the unalloyed duty of everyone in all circumstances and specifically of those who are just about to die. तो बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, मेरा एक प्रश्न है, पृच्छम इमं विपृच्छे, मैं आपसे भीख मांग के एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। वो क्या है? आप सोच के, आप सब लोग डिस्कस करके, संवाद करके मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो क्या है? जो व्यक्ति है, ये मनुष्य है, उनका कर्तव्य क्या है हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में? खासकर जो मरने वाले हैं उनका ड्यूटी, उनका कर्तव्य क्या है, आप मुझे बताइए। परपोर्ट। In this verse, the king has placed two questions before the learned sages. तो ये श्लोक में परीक्षित दो प्रश्न रखते हैं साधु संत के प्रति। पहला, The first question is, what is the duty of everyone in all circumstances? तो पहला प्रश्न है, हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति का कार्य क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण धर्म क्या है हर एक व्यक्ति का? दूसरा प्रश्न, the second question is that, what is the specific duty of one who is to die very shortly? दूसरा प्रश्न, तो एक प्रश्न लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिस्थिति में, हर एक अवस्था में क्या धर्म है, क्या कार्य है? दूसरा, स्पेसिफिकली मेरे बारे में, परीक्षित अपने बारे में पूछ रहे हैं, जिसका अभी मृत्यु होने वाला है बहुत जल्दी, उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसका क्या ड्यूटी है? आउट ऑफ द टू द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डाइंग मैन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एवरी वन इज अ डाइंग मैन, इधर वेरी शॉर्टली और आफ्टर 100 ईयर्स. तो परीक्षित दो प्रश्न पूछते हैं, वो क्या है, सामान्य धर्म क्या है हर एक व्यक्ति का हर एक अवस्था में, दूसरा, जो व्यक्ति मरने वाला है उसका धर्म क्या है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये दो प्रश्न में से दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है. क्या है? जिसका मृत्यु आने वाला है बहुत जल्दी, उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या होना चाहिए? ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दुनिया में हर एक व्यक्ति मरने वाला है निश्चित रूप से. पतत्य अवश्यम शतसंधि जर्जरम, 100% मृत्यु आने वाला है. इसलिए ये भौतिक जगत को मर्त्य लोग बोलते हैं. एवरी वन इज डाइंग, हर एक क्षण पे कोई ना कोई मर रहा है. तो सवाल है कि थोड़े समय में, अभी थोड़े वर्षों में या 100 साल बाद? 100 साल बाद भी समय बहुत जल्दी निकल जाता है कि नहीं? हमको लग रहा है 100 साल बहुत बड़ा है, पर चींटी के लिए, चींटी को भी वो 2-3 दिन जीता है, पर चींटी को भी लगता है मेरा जिंदगी बहुत बड़ा है. और देवलोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में, हमको लग रहा है कि उनका जिंदगी बहुत बड़ा है, पर एक बार स्वर्ग में आप लोगों का एंट्री होगा, या हम सब लोगों का एंट्री होगा स्वर्ग में, वहां पे भी समय बहुत जल्दी निकल जाएगा. हर एक देवता को लगता है अभी अभी मैं स्वर्ग में आया था, अभी निकलने का भी समय आ गया है. तो ये भौतिक दुनिया, समय बहुत जल्दी भागता है. इसलिए दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसका मृत्यु आने वाला है उसका धर्म क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज इमटीरियल, बट द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितना आयु है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो ज्यादा प्रश्न नहीं है. आयु लंबा है कि छोटा इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रश्न क्या है? जिसका मृत्यु आने वाला है उसका धर्म क्या है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है. महाराज परीक्षित, प्लीज दीज टू क्वेश्चन बिफोर सुखदेव गोस्वामी ऑल्सो ऑन इज अराइवल. एंड प्रैक्टिकली द होल श्रीमद भागवतम बिगिनिंग फ्रॉम द सेकेंड कैंटो अप टू द लास्ट 12th कैंटो डील्स विद दीज टू क्वेश्चंस. तो अभी थोड़े समय में 2-3 श्लोक के बाद सुखदेव गोस्वामी का आगमन होने वाला है. तो इसलिए परीक्षित ये तैयारी कर रहे हैं ये प्रश्न पूछने के लिए, स्पेसिफिकली दीज टू क्वेश्चंस, सामान्य कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, और खासकर जिसका मृत्यु आने वाला है उसका कर्तव्य क्या है. तो प्रभुपाद बता रहे हैं, अभी पहला स्कंद खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट थोड़े ही श्लोक बाकी हैं, 19वां अध्याय पहला स्कंद खत्म होने वाला है. तो दूसरा स्कंद से सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने लगते हैं. तो दूसरा स्कंद से ऑलमोस्ट एंड तक, 12वां स्कंद तक, ये दो प्रश्न का ही उत्तर है. और उसमें से एक प्रमुख प्रश्न क्या है, जिसका मृत्यु आने वाला है उसका धर्म क्या है, उसका उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी अगला 11 स्कंद बोलते हैं. द कंक्लूजन अराइव्ड ऑफ देयरफोर इज दैट डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा एज इट इज कन्फर्म बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ इन द लास्ट फेजेस ऑफ द भगवद गीता इज द लास्ट वर्ड इन रिलेशन टू एवरी वंस परमानेंट ड्यूटी इन लाइफ. तो सारांश, कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, भगवान का जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, जैसे भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण आ जाओ, ये जो कंक्लूजन है ये जिंदगी का लक्ष्य है, भगवान के शरण जाना. हर एक व्यक्ति का धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य. तो व्हाट इज द धर्म, हर एक व्यक्ति का धर्म क्या है, सब धर्म को छोड़ो और एक ही धर्म को अपनाओ, वो क्या है, पूरे तरह से कृष्ण का आश्रय. तो उसके लिए पूरे गीता बोला है और पूरा भागवत बोला है. महाराज परीक्षित, was already aware of this fact, but he wanted the great sages assembled there to unanimously give their verdict on his conviction so that he might be able to go on with his confirmed duty without controversy. तो महाराज परीक्षित को ऑलरेडी यह प्रश्न का उत्तर पता है, हर एक व्यक्ति का धर्म क्या है, कृष्ण का भक्ति करना. फिर भी परीक्षित ये साधु संत के मुख से सुनना चाहते हैं ताकि वो और फोकस के साथ ये कर्तव्य कर पाए. He has specially mentioned the word शुद्ध और perfectly correct. For transcendental realization or self-realization, many processes are recommended by various class of philosophers. तो यहाँ पे परीक्षित बोलते हैं, आप सब लोग सोच समझ के मुझे क्लियरली एक उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 7 दिन हैं. 7 दिन में आप मुझे बोलेंगे थोड़ा ध्यान योग करो, थोड़ा भक्ति योग करो, थोड़ा कर्म योग करो, नहीं कर सकता. मेरे पास 7 ही दिन हैं, एक ही मार्ग बताओ. 10 मार्ग मेरे पास करने के लिए समय नहीं है, 7 दिन हैं. टेल मी वेरी क्लियरली, एक ही सबसे जो ऊंचा मार्ग है वही बताओ. तो इसलिए परीक्षित उनको ये प्रश्न रखते हैं, आप सब लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप सब लोगों को पूरे शास्त्र पता है, वो सब शास्त्र का निचोड़ बताओ. जो व्यक्ति के पास सिर्फ 7 दिन बचा है, कौन सा मार्ग कर सकता है, कौन सा योग कर सकता है, कौन सा धर्म का पालन कर सकता है, जिसके वजह से उसको 7 दिन में सबसे ऊंचा गति की प्राप्ति हो. तो इसलिए परीक्षित बोलते हैं, ये शब्द यूज करते हैं शुद्ध, इसका मतलब है जो सबसे सही उत्तर है, सबसे सही मार्ग है, उतना ही बताइए. तो इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग योग है, अलग अलग जो फिलोसोफर हैं अलग अलग चीज के बारे में बोलते हैं. कोई बोलते हैं भक्ति करो, कोई कर्म बोलते हैं, कोई ज्ञान बोलते हैं. सम ऑफ देम आर फर्स्ट क्लास मेथड्स एंड सम ऑफ देम आर सेकेंड और थर्ड क्लास मेथड्स. तो थोड़े जो मार्ग हैं फर्स्ट क्लास है, उत्तम मार्ग है, थोड़े सेकेंड क्लास है, थोड़े थर्ड क्लास है. द फर्स्ट क्लास मेथड डिमांड्स दैट वन गिव अप ऑल अदर मेथड्स एंड सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड थस बी सेव्ड फ्रॉम ऑल सिंस एंड देयर रिएक्शंस. तो सबसे उत्तम मार्ग क्या है, बाकी मार्ग को छोड़ना, और सबसे उत्तम मार्ग का पालन करना मतलब कृष्ण का आश्रय लेना. भगवान गीता में पूरे 18 अध्याय में अलग अलग योग बोलते हैं, कर्म योग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, ध्यान योग बताते हैं, और कंक्लूजन क्या है भगवान का, अर्जुन को बोल रहे हैं मैंने जो भी योग बोला है वो सब भूल जाओ और एक ही चीज करो, वो क्या है, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, सिर्फ मेरे शरण आओ, और कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए परीक्षित ऑलरेडी उनको पता है, उनका विश्वास है कृष्ण के चरण कमल पे, फिर भी इन सबके मुख से सुनना चाहते हैं कि ये सबसे उत्तम मार्ग है, भक्ति का मार्ग. तो इस तरह से परीक्षित बहुत बुद्धिमत्ता से प्रश्न रख रहे हैं. और प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भी प्रामाणिक है, जो भी जिंदगी को सफल बनाना चाहता है, स्पेशली जो भौतिक दुनिया में है, पदम पदम या विपदाम न तेषाम, जब कष्ट दुख मृत्यु कभी भी आ सकता है, इसलिए जो परीक्षित का प्रश्न है वो हमारा भी प्रश्न होना चाहिए. इसका मृत्यु आने वाला है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट धर्म वो समझना, उसको अंदर स्वीकार करना, हृदय में उतारना और जीवन में पालन करना. तो ये करेंगे तो हमारे छोटे से जिंदगी में भी हम परीक्षित जैसा जो गति है भगवत धाम है उसको प्राप्त कर सकते हैं. तो हम टेक्स्ट 25 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्ण.